आप निरंतर आशुतोष कृष्ण शास्त्री से मनुस्मृति का श्रवण कर रहे हैं। आज 63वें श्लोक में भगवान मनु सूतक और मृतक संबंधी विचारों के बारे में विधान करते हुए 63वें श्लोक में कहते हैं, निरस्तु पुमान शुक्रम उपस्प्रस्यैव शुद्धयति वैजिकादभि संबंधात् अनुरुद्ध्यादयं धनम्। पुमान अर्थात पुरुष शुक्रम निरस्य वीर्यपात करके उपस्प्रस्यैव शुद्धयति, नहाने से ही शुद्ध हो जाता है। वैजिकात अविसंबंधात, पर स्त्री में वैजिक संबंध अर्थात गर्भस्थित होने से, त्रि अहम अथ अनुरुंध्यात, 3 दिन तक पाप की शुद्धि करनी चाहिए। 64वें श्लोक में समीपस्थ बांधवों की शुद्धि की विधि अशौच काल में कैसी होनी चाहिए, इस पर विचार करते हुए महर्षि मनु कहते हैं, अन्हा चैकेन रात्राम च त्रिरात्रैरेव च त्रिभिः सवस्प्रसो विशुद्ध्यन्ति त्रिहा दुदकदायिनः। अर्थात शव स्पर्शः, मुर्दे को छूने वाले, एकेन अन्हा च रात्र्या, 1 दिन और 1 रात्र में, त्रिरात्रे एव त्रिभिः, और 3 को 3 से गुणा करने पर अर्थात 9, इस प्रकार 10 दिन में विशुद्ध होती है, विशुद्ध्यन्ति शुद्ध होते हैं। उदक दाहिना त्रि अहात, जलदान करने वाले 3 दिन में शुद्ध होते हैं। 65वें श्लोक में, गुरु प्रेतस्य निशिष्यस्तु पित्रमेवं समाचरन् प्रेतहारै समं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति। अर्थात प्रेतस्य गुरु, जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है, उसका पितृ मेधम समाचरण शिष्य, दाह करने वाला शिष्य, प्रेतहारै समम, प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ, दशरात्रेण शुद्धयति, 10वें दिन शुद्ध होता है। इस प्रकार से यहां पर विचार करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं कि प्रेत किसको कहते हैं, केवल उसका अर्थ दर्शाने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्नकर्ता की बात का उन्हीं की मान्यता से उत्तर दिया है। यहां शुद्धि प्रकरण नहीं है, अतः महर्षि की वहां इस श्लोक की प्रमाणिक मानने की भावना नहीं है, लेकिन प्रत्येक विद्वान अपने अनुसार विचार करता है। यहां पर महर्षि दयानंद की बात अनुचित है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि प्रेतस्य गुरु, जब गुरु का प्राणांत हो उस मृतक शरीर का नाम ही प्रेत है, तो इसमें संशय का प्रश्न ही नहीं उठता। अगले श्लोक में अर्थात 66वें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं, रात्रिभिर्मास तुल्याभिर् गर्भस्रावे विशुद्धयति रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला। अर्थात गर्भस्रावे, गर्भस्राव हो जाने पर अर्थात गर्भ गिर जाने पर, मास तुल्याभि रात्रि भी, जितने मास का गर्भ हो उतनी रात्रियों में स्त्री विशुद्धयति शुद्ध हो जाती है। जैसे 3-4 मास का यदि गर्भ है तो 4 दिन तक, 3 मास का है तो 3 रात्रियों में, इस तरह से वो शुद्ध होती है। साध्वी रजस्वला अर्थात पतिव्रता रजस्वला स्त्री, रजसी उपरति, अरज के आने के बंद हो जाने पर, स्नानीन स्नान करने से ही शुद्ध हो जाती। अर्थात रज आने की अवधि 4 दिन मानी गई है, तो इन चार दिनों के उपरांत स्नान आदि शौच क्रिया कर कर वो स्त्री शुद्ध हो जाती है। अगले श्लोक में यानी 67वें श्लोक में महर्षि कहते हैं, नड़ाम मकरत चूड़ानाम विशुद्धनैर्तिकी स्मृता निवर्त चूड़कानाम तो त्रिरात्रां शुद्धरिक्षति। अर्थात अकृत चूड़ानाम नड़ाम विशुद्धि ही जिस बालकों का मुंडन संस्कार नहीं हुआ उनकी शुद्धि नैषिकी स्मृता एक रात में होती है, किंतु निवृत्त चूड़कानाम शुद्धि मुंडन हो जाने पर मरने वालों की शुद्धि त्रिरात्रात् इष्यति 3 रात में होती है। उनविंश वार्षिकम प्रेतम निध्ययुर्बान्धवा बहिः अलंकृत्य शुचो भूमा वस्ति संचयनादृते। बांधवा अर्थात कुटुंबी जन, परिवारी जन, परिजन उन विंशद वार्षिकम प्रेतम अलंकृत्य 19 साल के प्रेत को, प्रेत शरीर को जलाना नहीं चाहिए। क्यों? और न उदक क्रिया कार्या जलदान क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। और अन्य काष्ठवत त्यक्त्वा जंगल की लकड़ी के समान छोड़कर अर्थात गाड़कर त्रि अहम एव छपेयुः 3 दिन का शौच करे। नास्याम कार्योग्नि संस्कारो न च कार्योदक क्रिया अरण्ये काशवात् त्यक्त्वा छपे स्त्रुत्यहमेव हि। तथा 2 वर्ष से कम अधिक वायु के बच्चे को उनद्विवार्षिकम प्रेतम 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे को शव के वस्त्रों में लपेट कर बही गांव के बाहर अर्थात ओदकांते जहां पर तालाब होता है उसके बाहर शुचौ शुद्ध स्थान में अस्थि संचनात् रीति अस्थि संचन क्रिया के बिना भूमौ निदध्यु भूमि में गाड़ देना चाहिए। 68वें श्लोक में कहते हैं, नाश्य कार्योग्नि संस्कारो न च कार्योदक क्रिया अरण्ये काशवश त्यक्त्वा छपे सूत्रमेव च। न त्रिवर्षस्य कर्तव्या बान्धवैरुदक क्रिया जातदन्तस्य वा कुर्यन् नाम्नि वापि कृतिं कृते सति। बान्धवैः अर्थात कुटुंबी जनों को अत्रिवर्षस्य उदक क्रिया न कर्तव्या 3 वर्षों से कम आयु वाले की उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए। तथा अरुण ने काष्ठवत त्यक्त्वा जंगल में लकड़ी के समान छोड़कर चला आना चाहिए। जात दंतस्य अत्रिवर्षस्य उदक क्रिया न कर्तव्या 3 वर्ष से कम वाले बालक की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए। जात दंतस्य दांत निकल आने पर वा नाम्नि कृते सति अपि नामकरण संस्कार करने पर मृत्यु होने के बाद जलदान करे। 31वें श्लोक में, सब्रह्मचारी णेकाह मीति मतीते क्षपणम स्मृतम जन्मन्नेकादकानां तु त्रिरात्रां शुद्धिरिष्यते। सब्रह्मचारिणी अतीते सहपाठी ब्रह्मचारी के मरने पर एक अहम छपणम स्मृतम 1 दिन की शुद्धि कही गई है। शुद्धि तुम्हारे जैसे चलो देव। एक उदकानाम जन्मनि तो समान उदको में के जन्म होने पर त्रिरात्रात् शुद्धि हिष्यति, तीन रात्रियों की शुद्धि हो जाती है।
स्त्रीणाम संस्कृतानां तु त्रिहाक्षुध्यन्ति बांधवा यथोपति नैव कल्पेन शुद्धयन्ति शनाभयः।
असंस्कृतानां स्त्रीणाम तु जिसका वागदान हो चुका है किंतु विवाह संस्कार नहीं हुआ, ऐसी स्त्रियों की मृत्यु होने पर बांधवा पति पक्ष के रिश्तेदार त्रिआहात शुद्ध्यन्ति, तीन दिन में शुद्ध हो जाते हैं। और शनाभयः स्त्री के वंश के लोग यथोक्तेन नकल्पेत शुद्ध्यन्ति, इसी पूर्वोक्त विधान के अनुसार ही शुद्ध होते हैं। 73वें श्लोक में
अक्षार लवणान्नाह सुर्णिमज्जेयुश्चते अहम् मांसा मासासनम चनास्नीयुः शैरंश प्रतक्षितौ।
ते वे बांधव त्रयम् तीन दिन तक अक्षार लवण अन्यास्यु समुद्री नमक रहित भोजन करें, क्यों और च निमज्जेयुः नदी तालाब आदि में डुबकी लगाकर स्नान करें, तथा मांस असनम न असनीयु मांस का भोजन न करें, च क्षितौ पृथक शरीयन धरती पर अलग अलग सोना चाहिए।
सन्निधावेश वैकल्पः शवाशौचस्य कीर्तितः असन्निधावयम् गेयो विधि संबंधी बांधवी।
ईशा शाव अशौचस्य कल्पः, यह मृतक शुद्धि का विधान। सन्निधौ कीर्तितः, पास में रहने वालों के लिए कहा गया है। असन्निधौ दूर रहने होने पर संबंधी बांधवी है, संबंधी और कुटुंबियों को अयम विधि गेया, मृतक शुद्धि की यह विधि समझनी चाहिए, अर्थात अगले श्लोकों में उसका वर्णन करेंगे। 75वें श्लोक से जो देश काल के परे हुए हैं उनकी शुद्धि के बारे में मनु स्मृति में 75वें श्लोक में पंचम अध्याय के बताया गया है।
विगतम तो विशेषस्थम शृणुयाद्यो निर्दशम यक्षेशम दशरात्रस्य तावदेवा शुचिर भवेत्।
जो बांधव यह विशेषस्थम विगतम अनिर्दशम शृणुयात्, परदेश में गए की मृत्यु का समाचार 10 दिन पहले सुन ले, तो दशरात्रस्य यत्र शेषम तावत एव अशुचि ही भवेत्। वह 10 दिन पूरा होने में जितने दिन शेष हो उतने ही दिन तक अशुद्ध रहता है।
अतिक्रांते दशाहे च त्रिरात्रम अशुचिर भवेत् संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट वैवापो विशुद्धयति।
और दश अहे अतिक्रांते, 10 दिन के बीत जाने पर त्रिरात्यम अशुचि ही भवेत्, तीन रात का अशुद्ध रहता है। तू संवत्सरे व्यतीते, एक वर्ष के बाद मृत्यु का समाचार सुनने पर आपह स्पृष्ट्वा विशुद्धति, केवल जल का स्पर्श मात्र कर लेने से शुद्ध हो जाता है।
निरदशम याति मरणम श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च सवासा जलमाप्लुस्त्य शुद्धो भवति मानवः।
मानवः मनुष्य, ज्ञाति मरणम च पुत्रस्य जन्म निर्दर्शनम श्रुत्वा, संबंधी की मृत्यु और पुत्र के जन्म का समाचार 10 दिन बीत जाने पर सुनकर सवासा जलम आप्लुत्य शुद्धा भवति, वस्त्र सहित जल में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। बाले देशांतरस्थे च पृथक पिंडे च संस्थिते सवासा जलमाप्लुत्य शद्देव विशुद्धति। बाले देशांतरस्थे, बालकों के परदेश में रहते हुए, च पृथक पिंडे और पृथक पिंडे, पिंड के विभिन्न व्यक्तियों के संस्थिते मर जाने पर, सवासा जलम आप्लुत्य, वस्त्र सहित केवल जल में स्नान करके शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है।
अंतरदशा हे श्यातम चेत पुनर्मरण जन्मनि त्यावस्यात् दशुचिर विप्रो यावत् तस्यादर्न्य दर्शनम्।
अंतः दशा अहे चेत, 10 दिन के अंदर ही यदि पुनः मरण जन्मनि स्याताम, फिर जरण या मरण या जन्म हो जाए तो विप्र अर्थात द्विज यावत अनिर्दशम स्यात, जब तक पहले वाली मृत्यु शुद्धि या जन्म शुद्धि के 10 दिन पूरे न हो जाए, तावत अशुचि स्यात, तब तक अशुद्ध रहता है। अन्य अशुद्धियों की विधि बताई गई है।
त्रिरात्रमाहुरा शौच आचार्ये संस्थिते सति तस्य पुत्रे च पत्न्यां च दिवारात्रमिति स्थितः।
आचार्ये संस्थिते सति, आचार्य की मृत्यु हो जाने पर, त्रिरात्रम आशौचम आहु, 3 दिन का आशौच होता है, च तस्य पुत्रे पत्न्यां, यदि उस आचार्य की पुत्र या पत्नी की मृत्यु हो जाए, दिवारात्रम इति स्थिता, 1 दिन का अशौच होता है, ऐसी मान्यता है।
श्रोत्री तूपसंपन्ने त्रिरात्रम अशुचिर भवेत् मातली पक्षिणीम रात्रिम शिष्यर तिग्बांधवेश च।
और श्रोत्रीय उपसंपन्ने, वेद पाठी के मरने पर, त्रिरात्रम अशुचि ही भवेत, 3 दिन का आशौच होता है, च मातुलेह शिष्य ऋत्विक बांधवेशु, मामा शिष्य ऋत्विक और रिश्तेदारों के मर जाने पर, पक्षिणीम रात्रिम अर्थात 2 रात और उनके बीच का 1 दिन आशौच होता है।
प्रेते राजनि सज्जातिर यस्यस्याद् विषये स्थितः अश्रोत्रिये त्वह कृष्णम् अनुचाने तथा गुरु।
मनुष्य यस्य विषये स्थितः, जिसके राज्य में रहता है, राजनि प्रेति, यदि राजा की मृत्यु हो जाए, सज्योति यदि दिन में मरा तो सूर्यास्त तक, और यदि रात्रि में मरा तो सवेर छिपने तक आशौच रहता है, तू अश्रोत्रिय और अवेद पाठी कृष्णम अनुचाने, संपूर्ण वेद वेदांग जानने वाले तथा गुरु, तथा गुरु के मरने पर अहह 1 दिन का आशौच रखना चाहिए।
शुद्धे विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो माशेन शुद्ध्यति।
मृतक अशुद्धि में विप्रः दशाहेन शुद्धेत, ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, भूमिपः द्वादशाहेन, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्यः 15 अहेन और वैश्य 15 दिन में, शूद्र मासेन शुद्धति और शूद्र 1 मास में शुद्ध होता है।
न वर्धय दघाहानि प्रत्युहेन्नाग्निशुक्रियाः न च तत्कर्म कुर्माणः शनाभ्यो यशुचिर भवेत्।
अघ अहनि न वर्धयेत, अशुद्धि के दिनों में इनसे अधिक न बढ़ाए, अग्निस्क्रिया न प्रति ऊहेत, यज्ञ करना न छोड़े। तत् कर्म कुर्वाण इस यज्ञ कर्म को करने पर शनाभ्या अपि अशुचि न भवेत, सपिंड व्यक्ति भी अशुद्ध नहीं होता। दिवाकीर्त मुदक्याम च पतितं शूतिकां तथा सवं तत् स्पृष्टम चैव स्पृष्ट्वा स्थानेन शुध्यति। दिवाकीर्तिम उदक्याम पतितं शूतिकां सैव च स्पृष्टिनं स्पृष्ट्वा। चांडाल रजस्वला पतित प्रसूता सब और उसके सब को छूने वाले इन सब को छूकर स्नान एव शुध्यति, स्नान करके ही शुद्ध होता है। आचम्य प्रयतो नित्यम जपे दशु शुचिदर्शने सौरान मंत्रान यथोत्साहम पावमानेश्च शक्तितः। अशुचि ही दर्शनी, यदि अपवित्र व्यक्तियों का दर्शन हो जाए तो नित्यम आचम्य आचमन करके प्रयतः सावधान होकर यथोत्साहम उत्साहपूर्वक सौरान मंत्र मंत्रान सूर्य संबंधी मंत्रों को, जैसे उद्यंतम जातवेदशम इस प्रकार के मंत्रों को पढ़कर पावमानी पवित्र करने वाली ऋचाओं को पढ़कर पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनः पुनीतमाम इस प्रकार के मंत्रों को पढ़कर शक्तितः जपेत, यथाशक्ति जपना चाहिए। नारम स्पृष्टवास्थि स्नेहम स्नात्वा विप्रो विशुद्धयति आचम्यैव तु निस्नेहम गामालन्यारकमीक्षवा। विप्रः नारम सस्नेहम अस्थिम स्पृष्ट्वा, मनुष्य की गीली हड्डी को छूकर स्नात्वा विशुद्ध नहाकर स्नान करके शुद्ध हो जाता है। और नि स्नेहम सूखी हुई हड्डी को छूकर आचम्य आचमन करने मात्र से ही और हाथ धुल लेने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। अथवा गाम आलंबे गाम को गौ को स्पर्श कर लेने से, अथवा अर्कम ईक्ष अगर कुछ व्यवस्था न हो तो केवल भगवान भास्कर को देख लेने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। आदिष्टेन उदकं कुर्यात् आवृत्तस्य समापनात् समाप्ते तूदकं कृत्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धयति। आदिष्टि अर्थात ब्रह्मचारी आवृतस्य समापनात् ब्रह्मचर्य के व्रत पूर्ण न होने पर उदकम न कुर्यात् जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए। समाप्ते तु व्रत समाप्त हो जाने पर उदकम कृत्वा जलदान देकर त्रिरात्रेण एव शुद्धयति, तीन दिन रात्र में शुद्ध हो जाता है। व्रता शंकर जातानां प्रवज्यासु तितिष्ठताम आत्मन्यस्त्यागिनां चैव निवरते तोदकक्रिया। अर्थात व्रता शंकर जातानां तो च प्रवज्यासु तिष्ठताम, जो व्रता उत्पन्न करने वाले हैं अर्थात धर्म कर्म से हीन है वर्ण संकर है तथा परिव्राजकों की आत्मनः त्यागिनामेव आत्महत्या करने वाले हैं उदक क्रिया निवर्तयेत, जनदान क्रिया नहीं करनी चाहिए।
पाखंडम आश्रितानां च चरचन चरंतीनां च कामतः गर्भभृति द्रुहां चैव सुरापीनां च योषिताम।
और पाखंडम आश्रितानां जो पाखंड रचते हैं, जो स्त्रियां पाखंड रचती हैं और कामतः चरंतीम इच्छानुसार विचरण करती हैं, अर्थात व्यभिचारिणी। गर्भ भर्ती द्रुहाम, गर्भपात और पति से द्रोह करने वाली अथवा गर्भपात कराने वाली। च सुरापीनाम यशोतिताम, शराब पीने वाली इन स्त्रियों की उदक क्रिया नहीं करनी चाहिए, इनको जल नहीं देना चाहिए।
आचार्य स्वमुपाध्यम पितरम मातरम गुरुम निहर्त तो व्रति प्रेतान न व्रते न वियुज्यते।
व्रति अर्थात ब्रह्मचारी
स्वम आचार्यम उपाध्यायम पितरम मातरम गुरुम प्रेतान तु निरहत्य, अपने आचार्य उपाध्याय पिता गुरु इन सबों को उठाकर व्रतेन न वियुज्यते,
व्रत से हीन नहीं होता।
दक्षिणेन व्रतम शूद्रम पुरद्वारेण निर्हरेत पश्चिमोत्तर पूर्वस्तु यथा योगम द्विजन्मनः। मृतम शूद्रम दक्षिणेन पुरद्वारेण, मृत शूद्र को नगर के दक्षिण द्वार से तथा द्विजन्मनः द्विजों के शवों को यथा योगम क्रमशः पूर्व पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर और पूर्व, पश्चिम द्वार से वैश्य को, उत्तर द्वार से क्षत्रिय को और पूर्व द्वार से ब्राह्मण को निर्हरित शमशान लेना जाना चाहिए। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि इन सभी शवों को घर से किस प्रकार निकाला गया जाए इसका वर्णन भगवान मनु यहां पर करते हैं कि ब्राह्मण को पूर्व दिशा से और वैश्य को पश्चिम दिशा से और उत्तर द्वार से क्षत्रिय को के सब को निकालना चाहिए। 93 श्लोक में नराज्ञां मघदोषोस्ति व्रतिनां च संत्रिणां एन्दं स्नानमुपाशीना ब्रह्मभूताहिते सदा।
राज्ञां व्रतिनां च सत्रिणां, राजाओं को, ब्रह्मचारियों को और सत्रिणां अर्थात सत्र करने वाले, यज्ञ करने वाले लोगों को अघदोषः नास्ति, मृतक अशुद्धि नहीं लगती। ही ते इंद्रम स्थानम उपासीना सदा ब्रह्मभूता, क्योंकि वे इंद्र के स्थान पर बैठे हुए सदा ब्रह्मरूप होते हैं। एक तो राजा, दूसरा ब्रह्मचारी और तीसरा यज्ञ करने वाला।
राज्ञो महात्मिके स्थाने सद्यः शौचं विधीयते प्रजानां परिरक्षार्थ माशनं चात्र कारणं।
महात्मिके स्थाने महान या महत्वपूर्ण पद पर बैठने के कारण राज्ञः राजा की सद्यः शौचं विधीयते, तत्काल शुद्धि हो जाती है। प्रजानां परिरक्षार्थम आसनम अत्र कारणम, प्रजाओं की रक्षा के लिए राजा का राज पर पद पर बैठना ही इस शीघ्र शुद्धि का कारण है। यहां पर 93वें श्लोक का समर्थन करता हुआ, क्योंकि वहां पर एकदम सीधे बिना कारण बताए हुए अघदोषो न विद्यते कह दिया गया था, इसलिए उसका कारण बताते हुए अगले श्लोक अर्थात 94वें श्लोक में पुनः कहते हैं कि राजा को क्यों नहीं शुद्धि होती, अशुद्धि होती, क्योंकि यदि वो अशुद्धि में बैठ जाएगा तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा, प्रजा का न्याय कौन करेगा, प्रजा का पालन कौन करेगा, इसलिए राजा को शीघ्र ही शुद्धि हो जाती है, ऐसा 94वें श्लोक में बताते हैं। और डिम्बाह वहतानां च विद्युता पार्थिवेन च गोब्राह्मणस्य चैवार्थी यस्य चेक्षति पार्थिवः। और डिम्बाह आह वहतान विद्रोह या दंगे में मारे गए, युद्ध में मारे गए लोगों की, विद्युता च पार्थिवेन बिजली और दंड से मारे गए व्यक्तियों को, गो ब्राह्मणस्य अर्थे गौ और ब्राह्मण के लिए मरे हुओं की, तथा यस्य पार्थिवः इच्छति जिसकी शुद्धि राजा चाहता है उसको भी तत्काल शुद्धि हो जाती है। सोमाग्न्यर्कानिलेन्द्राणां वित्तापत्योर्यमस्य च अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयति नृपः। सोम अग्नि अर्क अनिल इंद्राणाम वित्त अपत्यो च यमस्य, इसमें सोम अर्थात चंद्रमा, अग्नि, वशु, वायु, इंद्र, कुबेर और यम, अष्टानाम लोकपालानाम वपु नृपः धारयति, इन आठ लोकपालों के शारीरिक गुणों को राजा धारण करता है। लोके साधिष्ठितो राजा नास्या शौचं विधीयते, शौचा शौचं हि मर्त्यानां लोकेश प्रभवाप्ययम्। राजा लोकेश अधितिष्ठता, राजा लोकपालों के अंश्या गुणों से संपन्न है। यस्य अशौचं न विद्यते, उसका अशौच नहीं होता, अशुद्धि नहीं होती ही, अर्थात क्योंकि मर्त्यानां शौचम अशौचम लोकेशः प्रभव अप्यम, मनुष्यों का यह सोच अशौच क्रमशः लोकपालों से उत्पन्न हुआ और नष्ट होता है। इस प्रकार उनके अंशों से युक्त होने के कारण राजा की अशुद्धि नहीं लगती। उद्यते राहेव शस्त्रैः क्षत्रधर्मः तस्य च सद्यः संतिष्ठते यज्ञस्तथा शौचमिति स्थितः। आहवे युद्ध में उद्यतैः शस्त्रैः लड़ने के लिए उठाए गए शस्त्रों हथियारों में क्षत्रधर्म हतस्य क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मरे सैनिकों को सद्यः यज्ञे सतिष्ठति, तत्काल यज्ञ वाला श्रेष्ठ फल मिलता है। तथा अशौचम इति स्थिता, तथा उसमें अशौच नहीं होता ऐसा निश्चय है। विप्रः शुद्धवद्यप्पः सृष्ट्वा क्षत्रियो वाहनायुधं वैश्यः प्रतोदं रश्मीन् वा यष्टिं शूद्रः कृतक्रियः। कृतक्रियः विप्रः अपः सृष्ट्वा शुद्धयति, अशौच क्रिया कर्म करके ब्राह्मण जल के स्पर्श से शुद्ध हो जाता है। क्षत्रिय वाहन आयुधम, क्षत्रिय सवारी और अस्त्र को वैश्यः प्रदोतम वा रश्मीन, वैश्य चाबुक या लगाम को छूकर पकड़कर, शूद्रः यष्टिम शूद लकड़ी को स्पर्श करके शुद्ध हो जाता है। सौवें श्लोक में, सौवें श्लोक से 104वें श्लोक तक अस्पिंडों से प्रेत की शुद्धि बताते हुए महर्षि मनु कहते हैं, एतद्वोभिहतं शौचं षट्पिंडेषु द्विजोत्तमाः असपिंडेषु सर्वेषु प्रेतशुद्धं निबोधयत। द्विजोत्तमाः, हे द्विजों में उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मणों, एतत् सपिंडेषु शौचम् अभिहितम्, यह सपिंडों की मृतक शुद्धि कही गई। सर्वेषु असपिंडेषु प्रेतशुद्धिं निबोधयति। अब मैं असपिंडों की मृतक शुद्धि के बारे में कहूंगा। असपिंडम द्विजम प्रेतो विप्रो निरहत्य बंधुवत विशुद्ध्यति त्रिरात्रेण मातुराप्तश्च बांधवान्। विप्रः अर्थात ब्राह्मण असपिंडम प्रेतम द्विजम बंधुवम निरहत्य। असपिंड मृत ब्राह्मण को बंधु के समान उठाकर और माता के सगे बांधव को उठाकर, मातुः आप्तान बांधवान्, माता के सगे बांधवों को उठाकर त्रिरात्रेण विशुद्धयति, तीन रात्रि में शुद्धि हो जाती है।
यद्यन्नमित्ततेषां तु दशाहीनैव शुद्धयति अनदन्नं नमन्नैव न चेतस्मिन् गृहे वशेत्।
न तेषाम् अन्नमत्ते, उसका अन्न नहीं खाना चाहिए प्रेत को ले जाने वाले का और उसके परिवार का। यदि जो अन्न खाता है तो दश अहेन एव अशुद्ध्यति, दस दिन में शुद्ध होता है। अनदयन अन्नम, यदि उसके अन्न को न खाता हो, न चेत तस्मिन् गृहे वसेत, और यदि उसके घर में न रहता हो तो अन्ना एव एक दिन में शुद्ध होता है।
अनुगम्ये क्षया प्रेत्यम ज्ञातिमज्ञातिमेव च स्नात्वा शचैलः सृष्ट्वा अग्निम घृतम प्राश्य विशुद्धयति।
ज्ञातिम च अज्ञातिम अज्ञातिम एव प्रेतम इच्छया अनुगम्य। मनुष्य अपने वंश के और बिना वंश वाले प्रेत के पीछे इच्छापूर्वक जाकर सचलैः स्नात्वा कपड़ों सहित स्नान, वस्त्रों सहित स्नान करके और उन वस्त्रों को धोकर अग्निम स्पृष्ट्वा अग्नि का स्पर्श करके घृतम प्राश्यम घी को चाटकर विशुद्धयति शुद्ध हो जाता है।
न विप्रम श्वेषु तिष्ठस्तु मृतम शूद्रेण नायनेत अस्वर्ग्याहुति शूद्र संस्पर्श दूषिता
श्वेषु तिष्ठस्व मृत विप्रम शुद्धेषु नारेत। अपने वर्ण या वैश्य वंश वालों के होते मृत ब्राह्मण को शूद्र से उठवाकर न ले जाए, क्योंकि शूद्र संस्पर्श दूषिता सा आहुति ही असुरज्ञा सा।
सूत्र के स्पर्श से दूषित हुई वह शरीर आहुति स्वर्ग में पहुंचाने वाली नहीं होती।
इन समस्त श्लोकों को अर्थात 58वें श्लोक से 104 श्लोक तक प्रक्षिप्त बताते हुए विद्वान इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसका कारण बताते हुए इनमें विषय विरोध दर्शाते हैं। कहते हैं कि इन श्लोकों में दिए गए देह शुद्धिम प्रवक्षामि एषः सौक्षस्य वह प्रोक्ता शारीरस्य विनिर्णय संकेतों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि शरीर और शरीर संबंधी मन बुद्धि आत्मा की शुद्धि को कहने का विषय है। इस आधार पर इस विषय में वही श्लोक मौलिक माने जा सकते हैं जो इस विषय से संबंध हो। इस संकेत के अनुसार 105 106 श्लोकों में अपनी भूमिका रूप में शुद्धिकारक पदार्थों की गणना की है। अगले श्लोकों में उन्होंने अदभि गात्राणि शुद्ध्यन्ति कहकर शुद्धि होना कहा है। क्रोध लालच अधर्माचरण आदि से मनुष्य के मन बुद्धि आत्मा आदि भी अशुद्ध होते हैं। इनमें शरीर की शुद्धि का वर्णन न होकर अशौच मानने की अवधि, सपिंड एवं असपिंडों के अशौच की विधि, शूतक अशुद्धि, प्रदेश में रहने वालों की अशुद्धि आदि का वर्णन है, वह विषय विरुद्ध है। दूसरा कारण इसका अंतर विरोध मानते हुए, प्रेत शुद्धि का आडंबर मनु विरुद्ध है ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि अशुद्धि के संपर्क से शरीरादि की अशुद्धि होना उसकी शुद्धि का उपाय 109वें श्लोक में भगवान मनु कहते हैं, अदभी गात्राणि शुद्ध्यन्ति, शरीर की शुद्धि जलों से होती है, तथा इनका शैलीगत आधार भी अलग होने के कारण सपिंड असपिंड के भेद चार अवधियों के अनुसार अशुद्धि मानना यह अयुक्तिपूर्ण वर्णन है, क्योंकि मृतक के संपर्क से यदि शरीर की अशुद्धि मानी गई है तो वह सपिंड असपिंड के समान होगी और उसकी शुद्धि जल से हो जाएगी। इसके लिए न तो अवध की कोई सार्थकता है न सपिंड असपिंड का भेद ही है। यदि मानसिक अशुद्धि अर्थात मन का शोध मानने वाले की बात है तो मन के लिए कोई अवध निश्चित नहीं होती और न ही अवध में सबकी दूर हो सकती है, अतः यह व्यवस्था अयुक्त युक्त है। मनु की व्यवस्थाएं युक्त युक्त होती हैं। इस विरोध के आधार पर ये श्लोक अर्थात 58वें श्लोक से 104वां श्लोक तक मनु विरुद्ध है, तथा प्रसंग विरोध बताते हुए ब्राह्मण कहते हैं कि यहां पर 105वें श्लोक में भूमिका के रूप में शुद्ध कारक पदार्थों का परिगणन, फिर शरीर संबंधी शुद्धियों का वर्णन जो कि सर्वमान्य विधि के रूप में भाव गंभीर से युक्त संक्षिप्त वर्णन है, इसमें शरीर संबंधी आत्मा मन बुद्धि चरित्र की शुद्धि का उल्लेख है। अतः ये 58वें से 104 श्लोक तक प्रक्षिप्त माने गए। 105वां श्लोक जो कि मनु का 14वां श्लोक भी माना जाता है, उसमें देह शुद्धि के कारक पदार्थों की गणना की गई है। ज्ञानम तपोग्निराहारो मृन्मनो वायुरुपांचनम वायु करमार ककालौच शुद्धि करत्रणि देहिनाम। ज्ञानम तपः अग्निः आचारः मृद्मनः वारि उपांजनम वायुः कर्म अर्क कालौ। अर्थात ज्ञानम माने ज्ञान, तपः तप अग्नि आहारः, मृद्मनः माने मिट्टी मन विचार, वारि माने जल, उपांजनु वायु माने लेप करना, कर्म सूर्य और काल, देहिनाम शुद्धे कर्तृणि, ये प्राणियों की शुद्ध करने वाले पदार्थ हैं। ज्ञान तप अग्नि आहार मिट्टी मन विचार जल लेप वायु कर्म सूर्य और काल। अगले श्लोकों में सर्वोत्तम शुद्धि की अर्थ शुद्धता को प्रकट करते हैं। सर्वेषामेव शौचानाम् अर्थशौचं परम स्मृतम् योर्थे शुचिर्हि न शुचिनिर् शुचिर्न मृद्वारि शुचिः शुचिः। अशौचम् सर्वेषामेव शौचानाम् परम स्मृतम्, अर्थशौचम् जो धर्म ही है से ही पदार्थों का संचय करना है वह पवित्रताओं में उत्तम पवित्रता है। अर्थात यह अर्थे शुचि सहज शुचि, जो अन्याय से किसी पदार्थ का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है। किंतु मृद्वारि शुचि न शुचि, जल मृत्तिका आदि से जो पवित्रता होती है धर्म के सदस्य उत्तम नहीं होती। धर्माचरण से विभिन्न चरित्र दोषों की शुद्धि। क्षान्त्या शुद्ध्यन्ति विद्वांसो दानीना आकारिलक्कारिणः प्रक्षण्ण पापा जप्पेन तपसा वेदवित्तमाः। विद्वांशः शान्त्याः, विद्वान लोग क्षमा से, अकार्यकारिणः दानेन, दुष्ट कर्मकारी सत्संग और विद्यादि शुभ गुणों के दान से, प्रक्षण पापा जप्येन, गुप्त पाप करने वाले हारे विचार से, त्याग कर तपसा वेदवित्तमा और ब्रह्मचर्य तथा सत्य भाषण आदि से वेदवित उत्तम विद्वान शुद्ध्यन्ति, शुद्ध होते हैं। 109वें श्लोक में शरीर मन आत्मा और बुद्धि की शुद्धि बताते हुए अरभिर अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः शत्तेन शुद्धयति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति एष शौचस्य वः प्रोक्तः शरीरस्य विनिर्णयः नानाविधीनां द्रव्याणां शुद्धे शृणुतु निर्णयम् अद्भिर् गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति जल के शरीर के बाहर के अवयव सत्येन मनः सत्याचरण से मन जल से शरीर के बाहर के अवयव और सत्याचरण से मन विद्या तपोभ्याम भूतात्मा विद्या और तप से सभी प्रकार के कष्ट सह के धर्म ही अनुष्ठान करने वाले से करने से जीवात्मा ज्ञानेन बुद्धि शुद्धति शुद्धयति ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है और पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत समस्त पदार्थों के विवेक से हमारा जो बुद्धि है दृढ़ निश्चय ही पवित्र हो जाती है। इसका कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जल से तो ऊपर के अंग पवित्र होते हैं आत्मा और मन नहीं, मन तो सत्य मानने से सत्य बोलने से सत्य करने से शुद्ध और जीवात्मा विद्या योगाभ्यास और धर्माचरण से ही पवित्र होती है तथा बुद्धिगान से शुद्ध होती है जल मृत्तिकादि से नहीं। एष शौचस्य वः प्रोक्तः यह शरीर शौचस्य विनिर्णय शरीर संबंधी अर्थात शरीर मन आत्मा की शुद्धि का निर्णय तुमसे कहा वह प्रोक्ता तुमसे कहा नाना विधीनाम द्रव्याणाम शुद्धे श्रणतु निर्णयम विभिन्न प्रकार के पदार्थों की शुद्धि का निर्णय अब अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे। एक सौ ग्यारहवें श्लोक में पात्रों की शुद्धि का प्रकार बताते हैं तैजसानां मणीनां च सर्वस्याश्ममयस्य च भस्मनाद्भिर् मृदा चैव शुद्धिरुक्ता मनीषिभिः तैजसां तैजस पदार्थों अर्थात चमकीले सोना इत्यादि और मणीनां मणियों के पात्रों की सर्वस्य अश्ममयस्य सब प्रकार के पत्थरों के पात्रों की शुद्धि मनीषिभिः भस्मनाद्भिः च मृदा एव उक्ता भस्म राख जल और मिट्टी से कही है निर्लेपम कांचनम भांडम अद्भिरेव विशुद्धयति अब्जमश्म मयम चैव राजतम चानुपस्कृतम निर्लेपम जिनमें किसी की चिकनाई जूठन आदि का लेप न लगा हो ऐसा कांचनम सोने का भांडाम पात्र अब्जम जल में उत्पन्न होने वाले मोती इत्यादि अश्ममयम पत्थरों के पात्र अनुपंस्कृतम राजतम चित्रकारी की खुदाई से रहित चांदी का पात्र अद्भी विशुद्धेत केवल जल से ही शुद्ध हो जाता है। अपामगनेश संयोगाद धर्मम रौप्यम निर्वभौ तस्मात् तयोस्त्वयोन्नैव निर्णेका गुणवत्तरः हैमं च रौम्यम सोना और चांदी रौप्यम अर्थात चांदी अपाम च अग्नि संयोगात निर्भव निर्भव जल और अग्नि के संयोग से उत्पन्न हुए। तस्मात् तयोः, इसलिए वे दोनों पदार्थ के बने पात्र निर्णेकः स्वन्योषाम्येव अपने उत्पन्न स्थान अर्थात जल और अग्नि से पवित्र होते हैं।
ताम्राय कांस्य रैत्यानां त्रिपुणः शीसकस्य च शौचं निर्हार्य कर्तव्यं क्षाराम लोद कवारिभिः।
ताम्र अयः कांस्य रैत्यानां त्रिपुणः एव शीसकस्य शौचं, तांबा लोहा कांसा पीतल रांगा और सीसा इनके बर्तनों की शुद्धि, यतारहम यथा आवश्यक क्षार अम्ल उदक वार भी राख खट्टा पानी और जल से कर्तव्यम करनी चाहिए।
द्रव्याणां चैव सर्वेषां शुद्धिरुत्पन्न पवनं स्मृतं प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणां च तक्षणं।
सर्वेषां द्रवाणां, सब घी तैल इत्यादि पदार्थ शुद्धि उत्पवनम छास लेने से, और संहतानां प्रोक्षणं ठोस वस्तु जैसे लकड़ी चौकी इत्यादि पहुँचने से, और दारवाणाम तक्षणम लकड़ी के पात्रों की शुद्धि छीलने से स्मृतम मानी गई है। यज्ञपात्रों की शुद्धि का प्रकार बताया गया। मार्जनम यज्ञपात्राणाम पाणिनाम यज्ञकर्मणि चमसानाम ग्रहाणाम च शुद्धि प्रक्षालनेन तु।
यज्ञकर्मणि, यज्ञ करने के समय प्रयुक्त यज्ञपात्राणाम यज्ञ पात्रों को के, चमसानाम च ग्रहाणाम शुद्धि चमचों और कटोरों की शुद्धि, पाणिनाम मार्जनम तो प्रक्षालनेन हाथों से रगड़ कर मांजने और धोने से हो जाती है।
चरूणाम स्रक्षुवाणाम च शुद्धिरुष्येन वारिणा स्पोषोर पशकटानाम च मूषलोलूखलस्य च।
घृत आदि की चिकनाई लगे हुए पार्थों की शुद्धि की विधि बताते हुए 24 श्लोक में कहते हैं, चरूणाम यज्ञ के लिए पाक बनाने के पात्र चरु स्थली आदि, श्रुक श्रुवाणम श्रुक और श्रुव नामक चम्मच विशेष पात्रों की, स्पर्श सूप सकटाम तलवार की आकृति का खद्र वृक्ष का बना खड़ग, स्पूर्ष छाज सकट यज्ञीय पदार्थों की ढोने की गाड़ी, और मुशल उखलस च मुशल और उखल यज्ञीय पदार्थों की शुद्धि उष्णी नवारिणा गर्भ जल से धोने से होती है।
औद्भिस्तु प्रोक्षणम शौचम बहूनाम धान्यवाशसाम प्रक्षालनेन त्वलपानाम अदभि शौचम विधीयते।
बहूनाम धान्यवाशसाम शौचम यदभि प्रोक्षणम, बहुत से अन्नों और वस्त्रों की शुद्धि जल से पोंछने से अर्थात डुबोने मात्र से हो जाती, किंतु अल्पानाम कुछ अन्न और वस्त्रों को शौचम शुद्धि अदभि प्रक्षालनेन विधीयते, जल से मलकर धोने से होती है।
चैव वक्षवर्ण चर्मणा शुद्धिर वैदरानां तथैव च शाकमूफल मूल फलानां च धान्यवक्षुद्धिरिष्यते।
चर्मणां शुद्धि चैलवत, चमड़े के बर्तनों की शुद्धि वस्त्रों के समान होती है। वैदलानां तथैव, बाँसों के पात्रों की शुद्धि उसी प्रकार होती है।
और शाकमूल फलानां शुद्धि धान्यवत इष्यते, शाक और कंदमूल फल इत्यादि शुद्धि अन्नों के समान जल से मलकर धोने से होती है।
कौशेया विशिका रूषै कुनपानामरिष्टकै श्रीफलैरंशुपट्टानां चौमणां गौरसर्पसै।
कौशेय अविकयोः आविकयोः रेशमी और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि, ऊषैः क्षार मिश्रिता पदार्थों से, कुतपानां कंबलों की शुद्धि अरिष्टकै रीठों से, अंशुपट्टानाम श्रीपलई सन आदि से बने कपड़ों की शुद्धि बेलफल से होती है। छौवाणाम गौर सर्पिशई छाल से बने हुए वस्त्रों की शुद्धि सफेद सरसों से होती है।
छौमवक्षंग शंगाणाम अस्थिदंतमयस्य च शुद्धिर्विजानता कार्या गोमूत्रेणोदकेन वा।
शंख श्रृंगाणाम अस्थिदंतमयस्य शुद्धि, शंख सींग हड्डी दांत इन से बने पदार्थों की शुद्धि विजानता बुद्धिमान व्यक्ति को छौम व छाल के वस्त्रों के समान, अथवा गोमूत्रेण उदकेन गोमूत्र अथवा पानी से और पानी से कार्य करनी चाहिए।
प्रोक्षणात्रणकाष्ठम च फलालम चैव शुद्ध्यति मार्जनोपाञ्जनैर्वे वेश्म पुनः पाके नम्रन्मयम्।
तृणम काष्ठम च पलालम, घास काष्ठ और पुआल से बने पदार्थ प्रोक्षणात् शुद्धे, जल में डुबाकर पोंछने से शुद्ध हो जाते हैं। और वेश्म की शुद्धि, घर की शुद्धि, मार्जन उपांजनैः, धोने बुहारने और लेपने से होती है। मृदमयम पुनः पाकेन, मिट्टी का पात्र पदार्थ फिर आग में पकाने से शुद्ध होता है। मध्यैर्मूत्रैर्पुरीशैर्वा स्थीवैनैः पूयशोणितैः संस्पृष्टं नैव शुद्धेत पुनः पाकेन मृण्मयम्। मद्यैः मूत्रैः पुरीशैः स्थीवनैः पूयशोणितैः, श्राब मूत्र मल थूक राद खून इनसे संस्पृष्टं मृण्मयम्, लिपा हुआ मिट्टी का बर्तन पुनः पाकेन नैव शुद्धेत, फिर पकाने से भी शुद्ध नहीं होता। सम्मार्जनोपांजनेन पांजनेन शेकेनोल्लेखनेन च भवाम च परिवासेन भूमि शुद्धिति पंचभिः। सम्मार्जन उपांजनेन शेकेन उल्लेखनेन च गवाम परिवासेन पंचभिः, बुहारना लीपना छिड़काव करना धोना कुरचना और गौओं का निवास, इन पांचों कर्मों में भूमि शुद्धयति, भूमि शुद्ध होती है। पक्षिजग्धम गवाग्रातम अवधूत अवधूतम अवक्षुतम दूषितम केशकीष्टैश्च मृत्पेक्षेणपेत् शुद्धयति। दूषितम केशकीष्टैश्च मृत्पेक्षेण शुद्धयत्। पक्षिजग्धम पक्षी से खाया हुआ, गवा आग्रातम गाँव के द्वारा सूंघा हुआ, अवधूतम पैर से छुआ हुआ, अवक्षतम जिस पर किसी ने छींक दिया हो, कीश केश कीट ही दूषितम केश और कीटों से बिगड़ा हुआ पदार्थ मृत्पेक्षेपणेन प्रक्षेपणेन शुद्धयति, मिट्टी के डालने से शुद्ध हो जाता है। यावन्नापैति मेध्याक्ताद् गन्धोलेपश्य तत्क्रतुः तावन् मृद्वारि तच्चादेयं सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु। यावत् जब तक अमेध्य अक्तात् अशुद्ध रूप से तत्कृत गंधा चलेपा उस अशुद्ध वस्तु की गंध और लेप न अपैति दूर नहीं हो जाता, सर्वासु द्रव्यशुद्धिषु मिट्टी और जल से धोए जाने वाले सब पदार्थ की शुद्धि के लिए उन्हें तावत तब तक मृद्वारि आदे आयेदम मिट्टी और जल से धोते रहना चाहिए। शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं की गणना करते हुए 127वें श्लोक में बताया गया है, त्रीणि देवा पवित्राणि ब्रह्मणानाम कल्पयन् अदृष्टमद्भिर्निर्वर्णक्तम् यक्षवाचा प्रशस्यति। देवा देवताओं ने त्रीणि ब्राह्मणानाम पवित्राणि अकल्पयन् तीन प्रकार की वस्तुओं को ब्राह्मणों के लिए पवित्र कहा है। एक तो अदृष्टम जिसकी अपवित्रता आंखों से न देखी गई, अदभि निर्णिक्तम जिसकी पवित्रता शंका होने पर जिस पर जल छिड़का गया हो, च यत वाचा प्रशस्यते जिसको वाणी के द्वारा ब्राह्मण लोग पवित्र कह दें। आपः शुद्धा भूमिगता वैतृष्णम यासुगोर भवीत अवाप्ताश्चेद मेध्येन गंधवर्ण रसान्विता। यासुगोह वैतृष्णम भवीत जिस पानी को पीकर गो तृप्त हो जाए, और अमेध्येन अव्याप्ता जिसमें कोई अपवित्र वस्तु हड्डी मांस मल आदि न पड़ी हो, गंधवर्ण रस अन्विता जिसकी रस गंध रंग और स्वाद ठीक हो, ऐसे भूमिगत आपा शुद्धा भूमि में स्थित और भूमि पर रहने वाला पानी शुद्ध हो जाता है होता है। नित्यम शुद्धः कारुहस्तः पर्णेयच्च प्रसारितम् ब्रह्मचारी गतम भैक्षम नित्यमेध्यमिति स्थितः। कारुहस्तः नित्यम शुद्धः, कारीगर का हाथ सदैव शुद्ध होता है। और यत पर्णे प्रसारितम जो वस्तु बाजार में बेचने के लिए रखी जाती है, ब्रह्मचारी गतम भिक्षम ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा ये नित्यम मेध्यम सदा पवित्र रहने वाली वस्तुएं हैं, इति स्थिता ऐसी मान्यता है। नित्यमांस्य शुचि स्त्रीणाम शकुनिः फलपातने प्रसवे च शुचिर्वत्सः स्वामृगग्रहणे शुचिः। स्त्रीणाम माश्यम नित्यम शुचिः, स्त्रियों का मुख सदा पवित्र होता है। फलपातने शकुनिः फल गिनाने से पक्षियों का मुख पवित्र होता है, अर्थात फल अपवित्र नहीं होता जिसे पक्षी अपने मुख से काट कर गिराते हैं। और प्रसवी वत्सा शुद्धि, दूध दुहते समय वत्स की शुद्धि हो जाती है। और बछड़े के द्वारा स्तनों से जो दूध गिराया जाता है, बछड़े से गिरा हुआ दूध अर्थात बछड़ों के द्वारा स्तनों से दूध पीने के बाद वह दूध अशुद्ध नहीं होता। मृग ग्रहणी स्वाशुचि, हिरण को पकड़ने में कुत्ते का मुख पवित्र है।
स्वभिर्हतस्य अन्मांसं शुचिस्तन्मनुरब्रवीत् क्रव्यादिभ्यश्च हतस्यान्यैश्चाण्डालाद्यैश्च दस्युभिः।
सभी हतस्य कुत्तों को के द्वारा मारे गए हुए, क्रव्य अदभी हतस्य कच्चा मांस खाने वाले पशुओं द्वारा मारे हुए, और अन्य ही चंडाल आदि अन्य चंडाल व्याध आदि द्वारा मारे गए, दस्य भी राक्षसों द्वारा मारे गए पशु का यत मांसम जो खाता है तत् मनु शुचि अब्रवीत, उसे मनु ने पवित्र कहा है।
ऊर्धम ना भेर्याणि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः यान्यधस्तन तानि मेध्यानि देहाच्चैव मलाश्चुताः।
नाभि उर्वम ऊर्धम यानि खानि, नाभि के ऊपर जितनी इंद्रियां हैं तानि सर्वशः मेध्यानि वे सब शुद्ध हैं, यानि जो अधस्तात नाभि के नीचे की इंद्रियां हैं वे देहाच्युताः मलाः शरीर से निकलने वाले सभी मल अमेध्यानि अपवित्र हैं।
मक्षिचा विप्रुषाश्छाया गौरस्वः सूर्यरश्मयः रजो भूर्या भूर्वा युरश अग्निश्च स्पर्शे मेध्या निर्दिशेत।
मक्षिकाः विप्रयुषु विप्रशु विप्रुषः छाया गौ अश्वः सूर्यरश्मयः रजः भू वायुः च अग्निः। मधुमक्खी उड़कर पड़ते जलकण, छाया गौ घोड़ा सूर्य की किरणें, धूल भूमि वायु अग्नि ये सब स्पर्शे मेध्यानि निर्दिशेत, स्पर्श करने से पवित्र होते हैं अर्थात इनके स्पर्श से अपवित्रता नहीं होती।
विणमूत्रोत्सर्ग शुद्ध्यर्थम मृद्वार्यादीनमर्थवत देयमर्थवत दैहिकानां मलानां च शुद्धिशुद्वादस्त्वयपि। वशा शुक्रस्य मत्संग मग्जामूत्रविट घ्राणकर्णविट श्लीमा श्रुदूषिको सेदो द्वादशैते नणाम्ला।
विणमूत्र उत्सर्ग शुद्ध्यर्थम, मलमूत्र त्याग की शुद्धि के लिए, त्याग के बाद की शुद्धि के लिए, दैहिकानाम मलानाम द्वादश अपशुद्धि शरीर के मलों की 12 प्रकार की शुद्धि के लिए, अर्थवत आवश्यकता के अनुसार मृतवारि आदेयम मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। नणाम द्वादश मलायते, मनुष्यों के 12 शारीरिक मल इस प्रकार होते हैं।
वशा शुक्रम श्रृंगम मज्जा श्रृंग मज्जा मूत्रविट घ्राण कर्णविट। वसा शुक्रम अश्रक अर्थात खून, मज्जा माने मांस, मूत्र विट माने विष्टा, घ्राण नाक का मैल, कर्णविट माने कान का मैल, श्लेष्मा माने थूक, अश्रु माने आंसू, दूषिका माने आंख का मैल और पसीना स्वेदः,
ये 12 प्रकार के मल हैं।
एकालिंगे गुदे त्रिस्त्रस तथैकत्र करे दश अभयो सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सिता।
शुद्धिम अभीप्सिता, शुद्ध चाहने वाले व्यक्तियों को लिंगे एका लिंग पर एक बार, गुदे तिस्ता गुदा पर 3 बार तथा एकत्र करे 10 तथा शुद्धि में इनके संपर्क में आने वाले बाएं हाथ से 10 बार उभयो शब्द दोनों हाथों में 7 बार मृदा दातव्या मिट्टी से धोना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासियों के कुछ नियम इस प्रकार बताए गए हैं।
एतक्षौसं गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणां त्रिगुणं स्याद्वयस्थानां यतीनां च चतुर्णिकम्।
एतत् यः शौचं गृहस्थानां, शुद्ध गृहस्थियों के लिए है। ब्रह्मचारिणाम द्विगुणम, ब्रह्मचारियों को इससे दुगुनी शुद्धि करनी चाहिए। वनस्थानाम त्रिगुणम, और वानप्रस्थों के लिए त्रिगुणी शुद्धि। और यतीनाम चतुर्गुणम, संन्यासियों को चार गुणी शुद्धि करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों का प्रकार बताते हुए 138वें श्लोक में कृत्वा मूत्रम पुरेशम वा खाद्यांचांत उपस्पृशेत वेदमध्येष्यमाणस्य अन्नमश्नश्च सर्वदा। मूत्रम च पुरेशम कृत्वा, मलमूत्र का त्याग करके शुद्धि के उपरांत च वेदम अध्येष्यमाणः, वेद का पढ़ना प्रारंभ करने से पूर्व, अन्नम अश्नम भोजन के समय सर्वदा, अचांतः खाने उपस्पर्शेत आचमन करके इंद्रियों का स्पर्श करे। तिराचामेदपः पूर्वम द्विः प्रमज्जास्ततो मुखम शारीरम शौचमिच्छन्न हे स्त्री शूद्रस्य सुत्कृतम। शारीरम शौचम इच्छन ही, शरीर की शुद्धि को चाहने वाला व्यक्ति पूर्वम त्रिः आचरित, पहले तीन बार आचमन करे। तथा मुखम द्वि प्रमज्जात, फिर दो बार मुख को धोए। किंतु स्त्री शूद्र तो सुकृत सुकृत, और स्त्री और शूद्र को एक एक बार ही आचमन मुख प्रक्षालन करना चाहिए। शूद्राणां मासिकं कार्यं वपनं न्यायवर्तिनां वैसवक्षौ सकल्पस्य द्विजोष्ठिष्ठं च भोजनम्। न्यायवर्तिनां शूद्राणां, शास्त्रोक्त कर्तव्यों के अनुसार आचरण करने वाले शूद्रों का वपनम मासिकं कार्यं, मुंडन प्रतिमास करना चाहिए। च शौच कल्पः वैश्यवत, और उनके जन्म मरण सूतक विधान भी वैश्य के समान होने चाहिए। और द्विजोष्ठिष्ठं भोजनम, द्विज के द्वारा खाने से चूठा छोड़ा हुआ भोजन करना चाहिए। नोच्छिष्टं कुर्वते मुख्यात् विप्रोषोऽङ्गे पतन्ति या न श्मश्रूणि गतास्न्यासं न दन्तान्तरधिष्ठितम्। यह मुख्या विप्रसु अंगे पतन्ति, जो मुख से निकलने वाली बूंदे हैं वे, तथा मुख में दाढ़ी मूछ के बाल, दांतों के भीतर लगा हुआ अन्न, ये मनुष्य के जूठा और अपवित्र नहीं करते। स्पर्शन्ति विन्दवः पादौ या आवाम आधा मयतः परान भौमिकस्ते समागेया न तैराप्रयतो भवेत्। जो दूसरों के पानी पिलाने के समय नीचे गिरने वाली जल की बूंदे पैरों को छूती हैं, वे भूमि के जल के समान पवित्र समझनी चाहिए, उनसे अपवित्र नहीं होता। उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्य हस्तः कथंचन अनिधायैव तद द्रव्यम माचान्तः शुचितामितान्। जो कभी कोई भक्ष्य पदार्थ अथवा अन्य कोई पदार्थ हाथ में लिए हुए हो, किसी जूठे हाथ मुंह वाले व्यक्ति से छू जाए, तो वह द्रव्य नीचे रखे बिना अर्थात हाथों के रखे हुआ आचमन करके ही शुद्ध हो जाता है। वान्तो विरक्तः स्नात्वा तु घृतप्राशनमाचरेत आचामे देव भुक्त्वान्नम स्नानम मैथुनिना स्मृतम्। वमन होने पर दस्त लगने के बाद स्नान करके घी चाटकर शुद्ध हो जाता है। अन्न अर्थात भोजन करते समय जो वमन हो जाए तो केवल आचमन करके ही शुद्ध हो जाता है। मैथुन करने वाले को तो शुद्धि के लिए स्नान करना पड़ता है। सुप्ता क्षुप्ता च भुक्त्वा च निष्ठीयोक्त्वा नृतानि च पीत्वा पोद्धेष्यमाणस्य आचाम्येत प्रयतोपिशन्। सोने से उठने पर छींक कर, भोजन करके, थूक कर और अर्थात झूठ बोलकर, जल पीकर, वेद पढ़ने के पहले किसी काम में व्यस्त होते हुए भी अर्थात काम को शीघ्रता हो तो अवश्य आचमन करें। 147वें श्लोक तक यह एषः शौच विधिः कृष्णो द्रव्यशुद्धिस्तथैव च उक्तो वा सर्ववर्णानां स्त्रीणां धर्मान् निबोधयत। इस प्रकार से यह शौच की विधि अर्थात शुद्धि की विधि, संपूर्ण शरीर की शुद्धि की विधि, उसी प्रकार पदार्थों की शुद्धि तुम्हें कही गई। अब स्त्रियों के कर्तव्यों को अगले श्लोकों में बताया जाएगा। बालया वा युवत्या वा वृद्ध्या वा योषिता, वृद्ध्या वा अपि योषिता न स्वतंत्रेण कर्तव्यं किंचित् कार्यं गृहेष्वपि। अर्थात बालया वा युवत्या वा वृद्धा अपियोषिता, बालिका युवती अथवा वृद्धावस्था को प्राप्त स्त्री को भी गृहेषु स्वतंत्रेण किंचित् कार्यं न कर्तव्यं, स्वतंत्र होकर अर्थात पिता पति पुत्र आदि की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बाले पितरो वशे तिष्ठेत पाणिग्राहस्यो वने पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भवेत् स्त्री स्वतंत्रताम्। स्त्री बाले पितुः वशे तिष्ठत, बचपन में पिता के अधीन रहे, यौवने पाणिग्रहणस्य युवावस्था में पति के अधीन, भर्तरि प्रेते पुत्राणां और पति के मरने पर पुत्रों के अधीन रहे, स्त्री स्वतंत्रताम् न भवेत्, स्त्री कभी स्वतंत्र न रहे। अगले श्लोकों में पित्रा भरता सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः एषां हि विहरेण स्त्री गर्हेत् कुर्याद्भिकुले। कोई भी स्त्री पिता पति अथवा पुत्रों से अपना विछोह अलग करने की इच्छा न करे, क्योंकि इनसे अलग रहने में यह आशंका रहती है कि कोई भी बात न हो जाए जिससे पिता तथा पति के कुलों की निंदा बदनामी हो जाए। अभिप्राय यह है कि स्त्री को संवदा पुरुष की सहायता अपेक्षित रखनी चाहिए, उसके बिना यदि असुरक्षा की आशंका बनी रहती। पत्नी में कौन से गुण होने चाहिए, इसका वर्णन 150वें श्लोक में करते हैं। यदा प्रहष्टया भाव्यम ग्रहकार्ये सुदक्षया सुसंस्कृतोपस्कारया वेचा मुक्तहस्तया। स्त्री की योग्य है कि सदा अवन्नित होकर चरुता के से ग्रह कार्यों में वर्तमान रहे, तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार, पात्र वस्त्र ग्रह आदि के संस्कार और घर के भोजनादि में जितना नित्य धन आदि लगे उसके यथा योग करने में सदा प्रसन्न रहे। पति शुश्रूषा के बारे में 191 श्लोक में कहते हैं। यस्मै दद्यात् पिता स्वेनाम भ्रात्यावानुमते पितुः तम शुश्रूषेत जीवंतम संस्थितम च न लंघेत। पिता इस स्त्री को जिसे दे दे, जिसके साथ विवाह करे, अथवा पिता की सहमति से भाई जिससे विवाह कर दे उसकी जीते हुए सेवा करे, और पत्नी रूप में साथ साथ रहते हुए अवमानना आदि से, व्यभिचार आदि से पतिव्रत धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मंगलार्थम स्वस्तेनम यज्ञश्चासाम प्रजापति प्रयुज्यस्ते विवाहेषु प्रदानम साम्य कारणम। विवाहों में जो स्वस्ति वाचन पाठ होता है इसके कल्याण की भावना से ही किया जाता है। विवाहों में स्त्रियों के पति के लिए सौंप देना ही इन पर पति का अधिकार होने का कारण है। अर्थात जो विवाह संस्कार पूर्वक पति के स्त्री को पति के लिए दिया गया जाता है, इस दान के पश्चात उन पर पति का ही अधिकार होता है, उससे पूर्व नहीं। अनर्पता अनर्ता व्रतकाले च मंत्र संस्कार कृतपति ही सुखस्य नित्यम दाही दातेह परलोके च योषितः। ऋतुकाल रहित काल में और ऋतुकाल में इस लोक और परलोक में स्त्री का मंत्रों द्वारा विहित संस्कार में वर्ण किया गया पति स्त्री को सदा सुख देने वाला है। विशीलः काम वृत्त्यौ वा गुणैर्वा परिवर्जितः उपचर्या स्त्रियां साध्व्या सततम् देववत्पतिः। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह बुरे स्वभाव वालों अथवा परस्त्री गमन करने वाले अथवा गुणों से रहित पति को भी सदा देवों के समान पूजा करे। नास्त्री स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नापि पोषणम पतिम शुश्रूयते येन तेन स्वर्गम महीयते। स्त्रियों के लिए पति से भिन्न कोई यज्ञ नहीं, न कोई व्रत, न कोई उपवास, न विधान है। जो वह पति की सेवा करती है इसी कार्य से स्वर्ग में जाकर आनंद को प्राप्त करती है। पाणिग्राहस्य साध्वी स्त्री जीवतो वामृतस्य वा पतिलोकमभीप्सन्ति नरवेत् किंचित् दप्रियम्। पतिलोक में पतिलोक की चाहना करने वाली पतिव्रता स्त्री जीवित या मृत पति के प्रति भी अप्रिय आचरण न करे। कामम तु छप्पेत देहम पुष्पमूल फलै शुभै न तु नामापि गृहीत्यात् पत्यो प्रेते परस्य तु। अपने पति के मर जाने चाहे पर चाहे श्रेष्ठ पुष्प कंदमूल फल कर ही शरीर को मिटा दे, किंतु दूसरे पति का नाम न ले। असीतामरणाक्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी योधर्मैकपत्नीनां कांक्षयन्तीं तमत्तनुं। जो पतिव्रता स्त्री का धर्म है, उस उत्तम धर्म की कामना करने वाली स्त्री नियम पूर्वक मन में शांति रखते हुए ब्रह्मचारिणी रहे। अनेकानि सहस्राणि कुमार ब्रह्मचारिणां दिवं गतानि विप्राणां अकृत्वा कुलसंतितम्। ब्राह्मणों में कई हजार कुमार ब्रह्मचारी हैं जो संतानोत्पन्न न करके स्वर्ग को प्राप्त कर गए। मृते भरतर साध्वी स्त्री ब्रह्मचर्य व्यवस्थिता स्वर्गम गच्छति पुत्राणि यथा ते ब्रह्मचारिणः। जैसे वे ब्रह्मचारी बिना संतान उत्पन्न किए स्वर्ग को प्राप्त हो गए, जैसे भीष्म इत्यादि पति के मर जाने पर पतिव्रता पुत्र रहित होती हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई स्वर्ग में जाती है। अपत्यलोभाद्यातु स्त्री भरतारविमतिवर्तते सेह निंदाम वापनोति पतिलोका चहीयते। जो कोई स्त्री संतान के लालच से पति का उल्लंघन करती है, अर्थात परपुरुष से संतान उत्पन्न करती है, सा इहलोकी इस लोक में निंदा को प्राप्त करती है और पतिलोक में भी भ्रष्ट हो जाती है। नान्त्योत्पन्ना प्रजास्तीह न चाप्यन्य परिग्रही न द्वितीयस्य साध्वीनां कश्चित् भर्तोपदिश्यति। इस संसार में दूसरे पुरुष से प्राप्त असंतान और दूसरे स्त्री से उत्पन्न संतान संतान नहीं कहलाती, और पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरा पति करने का विधान नहीं है। इनको 153 से 162 श्लोक तक प्रक्षिप्त श्लोक बताते हैं। अगले श्लोक में हे मनु, महर्षि मनु कहते हैं, पतिम हित्वापकृष्टम स्वम उत्कृष्टम या निशेवते निंदेवशा भवे लोके परपूरेति चोच्चये। यदि अच्छे व्यक्ति के मिलने की संभावना होने पर जो स्त्री अपने निम्न कुल या गुणों वाले पति को छोड़कर उत्तम कुल और गुणों वाले पति का सेवन करती है, वह लोक में अर्थात लोगों में निंदा प्राप्त करती है। और पहले यह दूसरे की पत्नी थी, इस विषय में व्यंग किया जाता है। व्यविचारात् भर्तु स्त्री लोके प्राप्नोति निंदताम सृगालयोनिं प्राप्नोति पापरोगैश्च पीडति। स्त्री पति का उल्लंघन अर्थात पति को छोड़ देने और परपुरुष के संपर्क करने से लोक में निंदा प्राप्त करती है और मरकर गीदड़ योनि में जन्म पाती है और कुष्ठ आदि पाप रोगों से पीड़ित होती है। पतिम यानाभिचरति मनोवाग्देह संयताम सा भरतलोकम आपनोति सदभि साध्योति चोच्यते। जो स्त्री मनवाणी और शरीर को संयम रखकर पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती, वह पति लोक अर्थात पति के हृदय में आदर का स्थान पाती है और श्रेष्ठ लोग उसको पतिव्रता या अच्छी पत्नी कहकर प्रशंसा करते हैं। अनेन नारी व्रतेन मनोवाग्देह संश्रया ह्याग्रया कीर्तिम आपनोति पतिलोकम परत्र च। जो स्त्री मन वाणी और शरीर के संयम पूर्वक रहकर इस आचरण से रहती है, वो इस लोक में उत्तम कीर्ति को प्राप्त करती है और मरकर स्वर्गलोक को प्राप्त करती है। एवं व्रताम सवरणाम स्त्री द्विजाति पूर्वमाचराम दाहेन्दग्निहोत्रेण यज्ञ पात्रैश्च धर्मवित। इस पूर्वोक्त आचरण का पालन करने वाली स्त्री को यदि वह पति पहले ही मर जाए तो धर्म जानने वाला व्यक्ति यज्ञ पात्रों का प्रयोग करके अग्निहोत्र विधि से उसका दाह संस्कार करे। भार्यायै पूर्वमारिणी दत्वामग्नीत्यकर्मणि पुनरदार क्रियां कुर्यात् पुनराधानमेव च। अपने से पूर्व मर जाने वाली पत्नी को अंत्येष्टि कर्म के द्वारा अग्नि में दाह संस्कार करके फिर विवाह करे और फिर 5 महायज्ञाग्नियों का आधान करे और 5 महायज्ञ करे। अंत में पंचम अध्याय का उपसंहार करते हुए 169वें श्लोक में भगवान मनु कहते हैं, अनेन विधिना नित्यं पञ्चयज्ञान्यहापयेत् द्वितीयम् आयुषो भागम् कृतदारो ग्रहं वशेत्। अर्थात पूर्वोक्त विधि से रहते हुए पञ्चयज्ञान न हापयेत्, पंचयज्ञों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आयुषः द्वितीयम् भागम् अर्थात आयु के द्वितीय भाग अर्थात 25 से 50 वर्ष तक कृतदारह विवाह करके गृहम वशेत, घर में निवास करे। इति श्री महर्षि मनु प्रोक्तायाम मनुस्मृतौ गृहस्थान्तर्गत भक्षा भक्ष देह शुद्धि द्रव्य शुद्धि स्त्री धर्म विषयात्मकः पंचमो अध्यायः।